नमस्कार भारत 9 अगस्त दिन गुरुवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। नर्व एजेंट मामले पर रूस पर पाबंदियां लगाएगा अमेरिका। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव आज, किसका पलड़ा है भारी?
बीजेडी, अकाली दल, टीआरएस ने पहले ही घोषित कर दिया और शिवसेना, जिसके बारे में बहुत डाउट थे, तीनों ने संकेत दे दिया कि वो एनडीए के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे।
दुनिया जहान में बात वेनेजुएला की राजनीतिक हलचल की।
चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिकन तेल की कंपनियां हो, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि वहाँ तेल और इस तरह के जो प्राकृतिक साधन हैं, वो सरकार के कब्जे में रहे, उनका राष्ट्रीयकरण।
और आखिर में चीन के बॉलीवुड से इश्क की कहानी।
मैं जाना हूँ या दाह हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। पूर्व रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर नर्व एजेंट से हमले के मामले में अमेरिका जल्द ही रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि उसने पाया है कि प्रतिबंधित रसायन के जरिए रूस ने ही ये हमला करवाया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी दी और 22 अगस्त से ये प्रतिबंध लागू करने का ऐलान किया। इसराइल ने गजा पट्टी में चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए हैं। ये हमले इसराइल पर किए गए रॉकेट हमलों के जवाब में किए गए हैं। इसराइल पर किए गए हमलों में 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था, लेकिन 2 मिसाइल इसराइल के एस्टरॉट शहर में गिर चुकी थी, जिसमें 16 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले चरमपंथी संगठन हमास ने चेतावनी दी थी कि इसराइल को उसके 2 चरमपंथियों को मारने की कीमत चुकानी होगी। जिम्बाब्वे के प्रमुख विपक्षी नेता टेंडाई बीटी को जाम्बिया ने शरण देने से इंकार कर दिया है। जाम्बिया ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि शरण पाने के लिए उनका आधार बेहद कमजोर है। हालांकि टेंडाई बीटी के वकील नोबिजिठा मिलिलो का कहना है कि उन्हें जाम्बिया प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं मिला है। नोबिजिठा मिलिलो ने कहा,
हमें अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो हमारा अनुरोध है कि हमें जाम्बिया से आगे जाने का अधिकार दिया जाए, ताकि किसी ऐसे देश में जा सके जहां उन्हें शरण मिल सकती है। उनकी जान को खतरा है और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दखल की जरूरत है, ताकि उन्हें जरूरी सुरक्षा दी जा सके। ये थे टेंडाई बीटी के वकील नोबिजिठा मिलिलो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर कथित ड्रोन हमले में शामिल होने के आरोप में 2 विपक्षी सांसदों से संसदीय प्रतिरक्षा का अधिकार वापस ले लिया गया है। वहीं सरकार द्वारा नियंत्रित सुप्रीम कोर्ट पहले ही विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष खोलियो बोर्गिस की गिरफ्तारी का आदेश दे चुका है। उन पर राजद्रोह, चरमपंथ और मदुरो की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। इससे पहले एक और विपक्षी नेता खुआन रेकेजेंस को भी गिरफ्तार किया गया था। निकोलस मदुरो विपक्ष पर अमेरिका और कोलंबिया के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के रिहाई संबंधी बयान को लेकर सऊदी अरब से माफी मांगने से इंकार कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कनाडा से इस बयान को वापस लेने की मांग की थी। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश उनसे मानवाधिकार के बारे में मजबूती से बात रखने की उम्मीद करता है। पिछले हफ्ते कनाडा ने सऊदी अरब में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी और उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया था, लेकिन सऊदी अरब ने इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया था। इसके बाद कनाडा के राजदूत को रिहा छोड़ने के लिए कह दिया गया था और कनाडा से अपने राजदूत को भी सऊदी अरब ने वापस बुला लिया था। उत्तरी इटली में सैकड़ों खेती मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं, जिनमें से अधिकतर अफ्रीकी प्रवासी हैं। मजदूरों की यह हड़ताल उन 2 सड़क दुर्घटनाओं के बाद शुरू हुई, जिसमें उनके 16 साथियों की मौत हो गई थी। घटना के बाद मजदूर खेत छोड़कर निकल आए। उनके हाथ में टमाटरों से भरी ट्रे थी और वो नारे लगा रहे थे, हम गुलाम नहीं हैं। मजदूरों का कहना है कि यहां उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और काफी बुरी हालत में जिंदगी बितानी पड़ती है। ये मजदूर गर्मियों में यहां टमाटर के खेतों में काम करते हैं। बोलीविया के राष्ट्रपति का ऐतिहासिक पदक और उनके परिधान का अहम हिस्सा, जिसे सैश कहते हैं, इल एल्तो शहर में सेना के एक अधिकारी की कार से चोरी हो गए। हालांकि ये दोनों ही चीजें बाद में एक स्थानीय चर्च में मिल गईं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। देश की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज उपसभापति पद का चुनाव होना है। राज्यसभा में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा यह चुनाव विपक्ष की एकजुटता को लेकर एक अहम इम्तिहान भी हो सकता है। उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीका ने कहा है कि उसने जांच के बाद पाया है कि ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी पर नर्व एजेंट यानी एक खतरनाक रसायन से किया गया हमला रूस नहीं करवाया था, और ऐसा करके उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा। इसलिए अमरीका अब रूस पर पाबंदियों का ऐलान करेगा जो इसी महीने के अंत से अमल में आ जाएंगी। ब्रिटेन ने अमरीका के इस कदम का स्वागत किया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
अमरीका का कहना है कि उसने यह पाया है कि प्रतिबंधित रसायन से सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी पर यह हमला रूस नहीं करवाया था, और इसलिए वह जल्द ही रूस पर पाबंदियों का ऐलान करेगा। इस फैसले की घोषणा बुधवार को अमरीकी विदेश मंत्रालय ने की। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैदर नॉट ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1991 के केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स कंट्रोल एंड वॉरफेयर एलिमिनेशन एक्ट के तहत यह पाया है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस पूरे मामले में रूस किसी भी तरह की भूमिका होने से इंकार करता रहा है। इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब इसी साल 4 मार्च को 66 साल के स्क्रिपल और उनकी 33 वर्षीय बेटी इंग्लैंड में सेलिसबरी सिटी सेंटर में एक बेंच पर बेहोशी की हालत में मिले थे। उनकी हालत बहुत खराब थी और कई हफ्तों के इलाज के बाद वो ठीक हो पाए थे। अपनी जमीन पर स्क्रिपल पर हुए इस हमले का आरोप रूस पर लगाते हुए ब्रिटेन ने और फिर उसके समर्थन में 20 से ज्यादा देशों ने अपने यहाँ से रूसी राजनयिकों को निकाल दिया था। उस वक्त ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने संसद में कहा था,
It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military grade nerve
अब यह साफ है कि सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी की हत्या सैन्य ग्रेड के नर्व एजेंट से की गई थी जो रूस में बनाया जाता था। इस हमले में इस्तेमाल किया गया रसायन नर्व एजेंट का ही एक रूप है जिसे नोविचोक कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस इस तरह के नर्व एजेंट का उत्पादन करता था और अब भी ऐसा करने में सक्षम है।
ये थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। अमेरिका इसी मसले पर पहले रूसी राजनयिकों को अपने यहाँ से निकाल चुका है, लेकिन अब उसने एक कदम और आगे बढ़कर पाबंदियों का ऐलान किया है। 22 अगस्त से लागू होने वाले ये प्रतिबंध कुछ खास तरह के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और अन्य तकनीकों के आयात से संबंधित होंगे। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ये प्रतिबंध 90 दिनों में और कड़े किए जा सकते हैं। इससे बचने के लिए रूस को रासायनिक हथियार इस्तेमाल न करने का आश्वासन देना होगा और संयुक्त राष्ट्र से जांच करवाने के लिए सहमत होना होगा।
ब्यौरा सुना रही थी कमलेश मठेनी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब भारत की बात। आज राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होंगे। मुकाबला है एनडीए के प्रत्याशी जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह और यूपीए के प्रत्याशी कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद के बीच। राज्यसभा में इस समय सदस्यों की कुल संख्या 244 है और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 123 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के पास राज्यसभा में सबसे ज्यादा 105 सीटें हैं, यानी जीतने के लिए उसे 17 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामसेशन से संपर्क किया और पहले यही पूछा कि उन्हें पलड़ा किस ओर झुकता दिख रहा है।
हरिवंश नारायण सिंह जी, क्योंकि आज बीजेडी और अकाली दल टीआरएस ने पहले ही घोषित कर दिया, और शिवसेना जिसके बारे में बहुत डाउट थे कि वो एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन देंगे या नहीं, क्योंकि उनके रिश्ते काफी में बहुत कड़वाहट आ गई है, तीनों ने इंडिकेट संकेत दे दिया कि वो एनडीए के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। अब फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या होता है ये भविष्यवाणी तो हम अभी बैठ के कर नहीं सकते, लेकिन जो संकेत आए हैं उसी के बेसिस में हम कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक टोकन फाइट ही होने जा रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस ये वंदना चव्हाण जो एनसीपी की हैं उनको अगर उम्मीदवार घोषित करती तो मुझे लगता है शायद शिवसेना जैसे प्रतिभा पाटिल को वोट किया था वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2007 में, वैसे ही इनको थोड़ा तो वो दुविधा में फंस जाती क्योंकि ये पूरा महाराष्ट्रियन एंगल आता और शायद उनको वोट कर देती जिस परिस्थिति में एनडीए को बहुत कठिनाई आती। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद को चुना है। बीके हरिप्रसाद वैसे अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका इतना नेटवर्क है सारे पार्टीज में कि वो जाके उनसे समर्थन मांग सकते हैं। और कांग्रेस की ओर से भी कोई प्रो एक्टिविज्म दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें देखना है कि ये जगन रेड्डी ग्रुप ने घोषित तो किया है कि वो एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन नहीं देंगे लेकिन वहां भी मुझे शायद संकेत कुछ ऐसे ही आ रहे हैं कि वो या तो एब्सटेन करेंगे या एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे।
टीएमसी के रुख को आप कैसा देखती हैं और क्या कांग्रेस के पास ये एक विपक्षी एकता को दिखाने का मौका था?
नहीं, टीएमसी तो किसी भी हाल में एनडीए के कैंडिडेट को तो बिल्कुल नहीं वोट करेगी, कतई नहीं वोट करेगी। हम तो बीजू जनता दल की बात कर रहे हैं। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आया था लोकसभा में तो उन्होंने वॉकआउट कर लिया। तो इस आज उनकी ओर से संकेत ये आ रहे हैं कि वो एनडीए के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। तो बीजेडी ने कभी कहा नहीं कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। इतना जरूर कहा है कि बीजेपी उभर के आ रही है उड़ीसा में और एक चुनौती है बीजेपी, पर इसका मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके अगले चुनाव लड़ने वाले हैं या ऐसा कुछ। और जहां तक ऑपोजिशन की एकता की बात है तो वो ये अच्छा मौका था कांग्रेस को एकजुट करने का और अन्य कुछ दल हैं उनको भी अपने साथ लाने का, लेकिन उसने मेरे को लगता है कांग्रेस ने ये मौका अपने हाथ से फिसलने दे दिया है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन। आगे बढ़ते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के जिला बारामूला के रफियाबाद के जंगलों में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने चार चरमपंथियों को मार गिराने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि वहां एक चरमपंथी और हो सकता है जिसकी तलाश अभी जारी है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बुधवार को पुलिस और सेना ने चार चरमपंथियों को जिला बारामूला के रफियाबाद जंगलों में मारने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि बीते दो तीन दिनों से इस बात की सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में चरमपंथियों का एक ग्रुप छुपा हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान चरमपंथियों और सेना के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ। गोलियों का तबादला शुरू होने के साथ ही सेना का एक पारा कमांडो घायल हो गया था जिन्हें सेना के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। पुलिस का कहना था कि चरमपंथियों के खिलाफ यह ऑपरेशन बुधवार सुबह को शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी वैद ने बीबीसी को बताया कि मुठभेड़ स्थल पर चार मृत शव देखे जा सकते हैं।
ये इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप भी हो सकता है या किसी इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप को रिसीव करने वाला हो सकता है। तो इसकी दो तीन दिन से खबर आ रही थी तो वहाँ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया आरआर और पैरा यूनिट्स के साथ। पुलिस भी है और इसको पूरे इलाके को आर्मी ने आरआर यूनिट्स ने घेरे पे लिया है। ये पता चला है कि चार बॉडीज दिख रही है लेकिन चूंकि वहाँ बारिश तेज हो रही थी और धुंध है और विजिबिलिटी पोर है तो इसलिए सर्च अभी नहीं की है, कल दिन निकलने के बाद ही की जाएगी।
श्रीनगर में सेना के 15वीं कोर के प्रवक्ता ने प्रेस को जारी एक बयान में चार चरमपंथियों को मारने की पुष्टि करते हुए बताया है कि चरमपंथियों के खिलाफ अभी तक ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि मारे गए चरमपंथी किस संगठन से थे। मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक मुठभेड़ में चार सैनिकों को मारा गया था। उस मुठभेड़ में सेना ने दो चरमपंथियों को भी मारने का दावा किया था। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का और कमलेश मठीनी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। बताइए कमलेश, क्या खबरें हैं आज?
आज हम देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर खबर लगी है कि यूपी बिहार सहित 9 राज्यों ने केंद्र सरकार ने ऑडिट की बात की थी, जैसे कि बालिकाओं के साथ बालिका गृह में यौन शोषण के मामले आ रहे हैं तो केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्यों में जितने भी शेल्टर होम हैं पूरे देश में उनका ऑडिट कराया जाए, लेकिन यूपी बिहार समेत 9 राज्यों ने इससे इंकार कर दिया है। उनकी ये शर्त है कि वो केंद्र सरकार से नहीं बल्कि अपने स्तर से ऑडिट कराएंगे। हालांकि यूपी बिहार में ही अभी अभी दो मामले आए हैं।
जी, एक तो देवरिया में ही उत्तर प्रदेश,
बिल्कुल। और इसी में ही एक दो फोटो है जिसमें मोती नगर के, दिल्ली के मोती नगर में कांवड़ियों से की जो एक हुआ है मामला, जिसमें कांवड़ियों ने कार की तोड़फोड़ की है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, उसकी भी तस्वीर दी गई है। ये बहुत वायरल भी हो रहा है, इसका वीडियो और तस्वीर भी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में दलाई लामा से जुड़ी खबर है, उनका एक बयान है। उन्होंने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक स्टूडेंट्स के एक सवाल पर कहा कि महात्मा गांधी जो है वो जवाहरलाल नेहरू को नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उनके इस बयान के बाद काफी उनकी आलोचना भी हो रही है।
एक खबर अमर उजाला में कमलेश में जिक्र करना चाहता हूं कि दिल्ली में भीख मांगना अब अपराध नहीं होगा। भिक्षावृत्ति को अपराध बनाने वाले बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959 को दिल्ली के संदर्भ में असंवैधानिक बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इंडियन एक्सप्रेस को हम देखें तो यहां यूपी के गांव की खबर है, खेलुम गांव, जहां के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। वजह यह है कि पुलिस ने उनको एक चेतावनी दी है कि अगर आपने कांवड़ियों के जो वहां से मुस्लिम बहुल गांव है, अगर वहां कुछ भी ऐसी गड़बड़ होती है, कोई टकराव होता है, तो आपसे 5 लाख रूपये वसूले जाएंगे, उसका एक बॉन्ड जो है उनसे साइन करवाया गया है।
बहुत शुक्रिया कमलेश मटेनी अखबारों की समीक्षा के लिए। लातिन अमरीकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो फिर चर्चा में हैं। बीते शनिवार मादुरो ने आरोप लगाया कि विस्फोटक से लैस ड्रोन के जरिए उनकी जान लेने की कोशिश की गई। अमरीका और कोलंबिया ने उनके दावे पर सवाल उठाए हैं। इसे मादुरो की कमजोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए मादुरो की नीतियों को वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति के लिए भी जिम्मेदार बताया जाता है। सही तस्वीर क्या है, इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की है।
Dunia Jahan.
A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica.
वेनेजुएला के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शनिवार 4 अगस्त को राजधानी कराकस में नेशनल गार्ड का 81वां सालाना समारोह चल रहा था। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भाषण दे रहे थे और नेशनल टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा था। शाम ठीक 5:41 पर भाषण रोककर राष्ट्रपति अचानक ऊपर देखने लगे। अंगरक्षकों से घिरे 6 फुट 3 इंच लंबे मादुरो के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। इसके बाद कैमरा मंच के सामने कतार में खड़े सैनिकों की ओर घूमा। वो भागते नजर आए और अचानक स्क्रीन काली हो गई। प्रसारण बंद हो गया। कुछ वक्त बाद वेनेजुएला के अधिकारियों ने ऐलान किया कि विस्फोटकों से लैस 2 ड्रोन के जरिए राष्ट्रपति की जान लेने की कोशिश की गई। जल्दी ही मादुरो भी सामने आए और विपक्ष के साथ पड़ोसी देश कोलंबिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया।
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda.
मेरी जान लेने की कोशिश की गई। मुझे शक नहीं है कि इस हमले के पीछे वेनेजुएला के अतिवादी हैं। उन्हें कोलंबिया से मदद मिली है। खुआन मैनुएल सांतोश इस कोशिश के पीछे हैं।
मादुरो ने उंगली अमेरिका पर भी उठाई। कोलंबिया ने आरोपों को खारिज करने में देर नहीं की तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने शक की सुई को घुमाकर मादुरो की तरफ ही कर दिया। मौके पर मौजूद रहे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के बयान ने भी वेनेजुएला सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगाए। 3 कर्मचारियों ने दावा किया कि धमाका एक अपार्टमेंट के गैस टैंक में हुआ। हालांकि मई में 6 साल के लिए दोबारा राष्ट्रपति चुने गए मादुरो के सहयोगियों के लिए ये वफादारी दिखाने का मौका बन गया। तख्ता पलट का लंबा इतिहास रखने वाले वेनेजुएला में रक्षा मंत्री व्लादिमीर लोपेज और दूसरे मंत्री बढ़ चढ़ कर बयान देने लगे। होटलों पर छापे मारे गए, गाड़ियां जब्त हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन एक तस्वीर इन सब से अलग थी। आशंकित राष्ट्रपति, उनकी डरी हुई पत्नी और सत्ता का सबसे बड़ा संबल माने जाने वाले नेशनल गार्ड के भागते जवानों के मीम बने और लोग सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर करते हुए मजा लेने लगे। विश्लेषकों ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझते देश की ये तस्वीरें सिर्फ सरकार के अस्थिर होने का संकेत नहीं देती बल्कि इससे विपक्ष और अतिवादियों की निराशा और दुस्साहस भी जाहिर होता है। वेनेजुएला में भारत के राजदूत रह चुके निरंजन देसाई को सुनिए।
वेनेजुएला की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत गंभीर है तो कुछ होने वाला है लगता है, कब होगा वो तो बता नहीं सकते।
वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली का शोर पूरी दुनिया में है। केंद्रीय बैंक ने साल 2015 से महंगाई दर के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री स्टीव हॉनके के मुताबिक अप्रैल में महंगाई दर 18,000% थी। साल 2008 के बाद से GDP 41% से ज्यादा गिर चुकी है। साल के आखिर तक ये स्थिति और खराब हो सकती है। वेनेजुएला की मुद्रा बॉलीवर की गिरती साख को लेकर BBC संवाददाता व्लादिमिर हर्नांडेज ने कुछ अर्से पहले एक दिलचस्प तुलना की।
This cup of coffee in a way encapsulates the drama of the Venezuelan crisis. This is the equivalent of what I had to pay.
वेनेजुएला के संकट को कॉफी के एक कप के जरिए समझा जा सकता है। 15 साल पहले जितनी कीमत में एक कमरे का एक फ्लैट मिलता था, आज एक कप कॉफी मिलती है।
सबसे ज्यादा दिक्कत में वो तबका है जो गरीबी रेखा के नीचे है। आर्थिक संकट से परेशान हजारों लोग ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों का रुख कर चुके हैं। ये स्थिति उस देश की है जिसे प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद मिला है। पश्चिम में बर्फीले पहाड़, दक्षिण दिशा से लगे अमेजन के जंगल और उत्तर में समुद्री तट है। यहाँ तेल और गैस के साथ सोने का भंडार भी है। हाल में वेनेजुएला का दौरा करने वाले दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल नाफे की राय में प्राकृतिक संपन्नता भी कुछ हद तक वेनेजुएला की मुश्किल की वजह है।
वेनेजुएला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउथ अमेरिका का देश है, लेकिन ये पूरे कैरिबियन को झांक करके देखता है। सारे सी रूट को कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ से। पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है और तेल इतना है, लोग कहते हैं सऊदी अरब से भी ज्यादा। अभी तो गोल्ड भी डिस्कवर हो गया। अभी लोग ये कहते हैं वहाँ नेचुरल गैस इतनी ज्यादा है कि ये सब देशों को सप्लाई करेगा। तो वेनेजुएला के पास वेल्थ बहुत है और उसकी वजह से चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिकन तेल की कंपनियां हो, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि वहाँ तेल और इस तरह के जो प्राकृतिक साधन है वो सरकार के कब्जे में रहे, उनका राष्ट्रीयकरण।
आर्थिक विश्लेषकों की राय है कि दुनिया में तेल की कीमतें गिरने से वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। उसे 90% विदेशी मुद्रा तेल के निर्यात से ही मिलती है। मादुरो के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ह्यूगो चावेस की गरीबी हटाने और समानता लाने से जुड़ी सामाजिक योजनाओं ने भी देश की स्थिति खराब की। निरंजन देसाई बताते हैं कि चावेस के पहले देश के दो राजनीतिक दलों में ऐसा गठजोड़ था कि सत्ता में कोई रहे वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। चावेस ने इस गठजोड़ को तोड़ा।
मगर चावेस का प्रॉब्लम था he was too much of a socialist। इनकी एलीट है ना, वो ज्यादातर पैसे बनाते हैं मगर रहते हैं मायामी में। बोलते हैं मायामी इज द कैपिटल ऑफ लैटिन अमेरिका।
वेनेजुएला की राजनीति पर नजर रखने वाले अब्दुल नाफे को भी लगता है कि यूरोपीय नस्ल वाले लोगों को चावेज और मादुरो जैसे लोगों का उभार रास नहीं आया है। हालांकि उन्हें विपक्ष के इस तर्क में भी दम दिखता है कि बदहाली के लिए सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। लेकिन राष्ट्रपति मादुरो अमरीका और उसके सहयोगी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को मुश्किल की वजह बताते हैं। बस ड्राइवर रहे मादुरो को आज भी ड्राइविंग सीट संभालना ही पसंद है। मादुरो अपने राजनीतिक आदर्श चावेज के ही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आलोचक उन्हें करिश्माई चावेज के आसपास भी नहीं देखते और उन्हें चावेज की भद्दी नकल बताते हैं। विपक्ष उन्हें दमनकारी तानाशाह के तौर पर देखता है जो सेना के दम पर सत्ता पर काबिज है, लेकिन समर्थकों की नजर में वो असमानता को दूर करने वाले नायक है। मुश्किल वक्त में मादुरो मदद के लिए सेना के अलावा चीन जैसे मित्र देशों से आस लगाए हैं।
पूरे लैटिन अमेरिका में जितना भी पैसा चीन ने लगाया है उसमें तकरीबन आधा पैसा चीन का वेनेजुएला में लगा हुआ है।
मादुरो को ये उम्मीद भी है कि तेल की कीमतें बढ़ने से वेनेजुएला की तकदीर बदलेगी, लेकिन शनिवार के कथित हमले के बाद एक आशंकित राष्ट्रपति की तस्वीर देखने वाले विरोधी और आलोचकों का सवाल है कि क्या बदलाव मादुरो की उम्मीद के मुताबिक होगा।
दुनिया जहान आपको कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। चीन में इन दिनों फिल्मों का बाजार चहक रहा है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि यहां सिनेमा घरों से होने वाली कमाई 8.5 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे बाजार में दंगल, हिंदी मीडियम, बाहुबली, पीके जैसी भारतीय फिल्मों ने न सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दी बल्कि पैसा बनाने के अलावा चीनियों का दिल भी जीता। चीन में लोग भारतीय फिल्मों को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, सुनिए चीन से ही विनीत खरे की रिपोर्ट।
सलमान जी, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जय हो।
मैं चीन के अनहुई प्रांत के दूर के गांव में था जहां खाने की टेबल पर 7 साल के बच्चे ने बताया कि उसने दंगल फिल्म देखी थी। सिर्फ बच्चे ने ही नहीं, खाने के टेबल के चारों ओर बैठे करीब करीब सभी लोगों ने बताया कि उन्हें फिल्म कितनी पसंद आई। दंगल, हिंदी मीडियम, थ्री इडियट्स, पीके, टॉयलेट जैसी फिल्मों ने चीन के शहरों गांव में बॉलीवुड और भारत की छवि के लिए जो काम किया है शायद ही किसी डिप्लोमेसी से संभव हो।
मैं चांद हूँ या दाह हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं
शंघाई में मेरी मुलाकात आमिर खान फैन कैरन चेन से हुई जिन्होंने पिछले साल दंगल देखी।
At that time I was very fat. About 98.
जब मैंने दंगल देखी तब मेरा वजन 98 किलो था। फिर मैंने दंगल में आमिर में हुआ बदलाव देखा और खुद से कहा ये तो मैं भी कर सकती हूँ और अब देखिए मैं कैसी बन गई हूँ।
भारतीय फिल्मों के फैन चियान पिन ली विदेशी फिल्में चीन लाने का काम करते हैं। ली के मुताबिक कॉलेज के जमाने में वो थ्री इडियट्स में साइलेंसर के किरदार जैसे थे जो किताबों का रट्टा लगाया करता था। पूर्वी बीजिंग में अपने दफ्तर में बैठे चियान पिन ली ने बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनी हुई थी और लैपटॉप पे भारतीय फिल्मों के क्लिप्स और वीडियोस थे।
Right now, the real life, that movie reflects the real life of Indian people.
भारतीय और चीनी समाज एक जैसा है। थ्री इडियट्स, हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में इमोशंस, प्यार, पारिवारिक रिश्तों की झलक मिलती है जो चीन की फिल्मों से गायब है। चीन की फिल्मों में एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स और अजीब से प्लॉट होते हैं जो मुझे समझ नहीं आते, इसलिए मुझे भारतीय फिल्में ज्यादा पसंद हैं।
ये थे चियान पिन ली। लेकिन चीन में कई फैंस बॉलीवुड के अलावा साउथ इंडियन मूवीज के भी दीवाने हैं। मिलिए विवियन से जिन्होंने फिल्म पीके के बाद बॉलीवुड 2 देखी। वो इतनी प्रभावित हुई कि फिल्म के पोस्टर्स और गुडीज उन्होंने जापान से मंगवाए।
I was quite shocked when I watched the Bahubali the conclusion.
जब मैंने बाहुबली पार्ट 2 देखी तो फिल्म की स्टोरी टेलिंग, गाने और डांस देखकर मैं दंग रह गई। फिल्म में डायरेक्टर एसएस राजमौली ने बहुत खूबसूरती से भारत की अनोखी सभ्यता को दिखाया है।
ये थी विवियन। चीन में विदेशी फिल्मों के लिए कोटा सिस्टम है, यानी एक निश्चित संख्या की ही विदेशी फिल्में यहां रिलीज हो सकती हैं। पिछले साल दंगल के मुकाबले इस साल जून तक 5 भारतीय फिल्में चीन में रिलीज हो चुकी हैं। चीन में बॉलीवुड फिल्मों की बढ़ती मांग पर चिंता ये भी है कि कहीं ज्यादा फिल्में बाजार खराब न कर दें। भारतीय डायरेक्टर कबीर खान के साथ को प्रोडक्शन के अलावा एलन ल्यू चीन में आमिर खान की एक फिल्म का रीमेक भी बना रहे हैं। चीन में भारतीय फिल्मों के फैंस के लिए पिक्चर अभी शुरू हुई है। विनीत खरे, बीबीसी, बीजिंग, चीन।
कहानियां चीन की। चीन से विनीत खरे की ये विशेष श्रृंखला आप इस पूरे हफ्ते सुनेंगे। आज शाम दिन भर कार्यक्रम में भी उनकी एक और रिपोर्ट सुनिएगा। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हमेशा भाग्यशाली साबित हुआ है लॉर्ड्स का मैदान और यहीं पर आज से शुरू होने जा रहे दूसरे टेस्ट में विराट कोहली एंड कंपनी जीत दर्ज करते हुए 5 मैचों की सीरीज में बराबरी हासिल करने के इरादे से उतरेगी। मेरी बात हुई क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल से।
अगर भारत ने टेस्ट मैच जीतना है तो उनके बैट्समैनों को रन बनाने पड़ेंगे, 350-400 रन बनाना पड़ेगा अगर टेस्ट मैच जीतना है। बाकी बॉलिंग जो है वो आपको लेट डाउन नहीं करेगी। बॉलिंग जो हमारी है बहुत बेहतरीन बॉलिंग है और पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंग्लैंड की टीम भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर हम ही इतना अगर खराब खेलेंगे तो तब वो तो जीतेंगे। अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल ही कर रही है।
खेल समाचारों में आज इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। पूर्व रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर नर्व एजेंट से हमले के मामले में अमरीका जल्द ही रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है। इसराइल ने गजा पट्टी में चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए हैं। ये हमले इसराइल पर किए गए रॉकेट हमलों के जवाब में किए गए हैं। जिम्बाब्वे के प्रमुख विपक्षी नेता टेंडाई बिटी को जाम्बिया ने शरण देने से इंकार कर दिया है। जाम्बिया ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि शरण पाने के लिए उनका आधार बेहद कमजोर है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर हुए कथित ड्रोन हमले में शामिल होने के आरोप में 2 विपक्षी सांसदों से संसदीय प्रतिरक्षा का अधिकार वापस ले लिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के रिहाई संबंधी बयान को लेकर सऊदी अरब से माफी मांगने से इंकार कर दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपको तारीख हमारी तरफ से गलत बताई गई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगला प्रसारण शाम 7:30 बजे दिनभर में। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष, कुलदीप मिश्र को अनुमति दीजिए और तब तक पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।